श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
भगवान भगवान राम मेरे साई राम।
हम नित्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें शांति दो। वो खासकर जब पितृपक्ष चल रहा होता है, अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जो हमारी क्रिया होती है वो क्या होती है? ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कई लोग भोजन बनाकर बाहर पक्षियों को देते हैं। ये मान्यता है, ये माना जाता है कि जो पूर्वज हैं, जो गुजर चुके हैं, वह ब्राह्मणों के माध्यम से या पक्षियों के माध्यम से आहार को ग्रहण करने आते हैं। ध्यान दीजिएगा, पितृ पक्ष, पितृ का अर्थ है फोर फादर, वो पूर्वज जो गुजर चुके हैं, हु पास्ट अवे, उनको याद करते हैं। पक्ष क्या है? एक मास के अंदर दो पक्ष आते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष वो है जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस की ओर जा रहा होता है, दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कलाएं कम हो रही होती हैं, चंद्रमा का प्रकाश कम हो रहा होता है, और ये समय आता है पूरा अंधकार छा जाता है। दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष, जब अमावस से लेकर पूर्णिमा की ओर जाते हैं, चंद्रमा दिन प्रतिदिन अपनी कलाओं को बढ़ाता है, चंद्रमा का प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। जब पूर्णिमा होते है, फुल मून होता है, उस दिन चंद्रमा सूर्य का अधिकतम प्रकाश धरती पर प्रतिबिंबित करता है। विचार कीजिएगा, कई जगह ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष में अपने शरीर को त्यागता है वो अंधकार की ओर जाता है, और जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में अपने शरीर को त्यागता है वह प्रकाश की ओर जाता है। क्या आप सोचते हैं तो होता होगा? आंतरिक कारण को जानने का प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा मन का प्रतीक है, जब दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपने प्रकाश को खो रहा है, अमावस की ओर जा रहा है, कहने का तात्पर्य है अगर हमारा मन दिन प्रतिदिन अपनी गरिमा को खो रहा है, अपनी पूर्णता को खो रहा है, परमात्मा के नाम को खो रहा है, अच्छे व्यवहार को खो रहा है, अच्छी वैल्यूज को खो रहा है, तो हम अंधकार की ओर जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी उम्र में, अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया ही ना हो, केवल संसार की ओर भागता रहे, केवल मेटीरियल वर्ल्ड की ओर भागता रहे, केवल संसार को भोगने की इच्छा को तीव्र करता रहे, जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है वो इच्छा उसके अंदर दब के रह जाती है, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा समाप्त होती है दूसरी आ जाती है, इच्छाओं पे नियंत्रण खोता जाता है इंसान। अगर हम दिन प्रतिदिन गलत काम करें, लोगों को धोखा दें, लोगों को दर्द दें, दुख दें, क्या हमारा मन शांति को प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं। जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, हमारा मन नहीं मरेगा, शरीर मर जाएगा, घर वाले आपके शरीर को जला देंगे, दफना देंगे, लेकिन आपका मन आत्मा के साथ आसमान में या किसी भी लोक में भटकता रह जाएगा। बिना शरीर के आप कर्म नहीं कर सकते, बिना शरीर के आप भोग नहीं सकते, तो वह मन भटकता रह जाता है। जब मन शरीर को त्याग के ऊपर जाता है या अन्य लोक में जाता है, अन्य स्थान पर जाता है, वह अपने आप को पहचानता है, मैंने ये क्या कर लिया, मैं क्या करने गया था, क्या करके आया, अब ना जाने मुझे दोबारा शरीर कब प्राप्त होगा, कब मैं अपने कर्मों का भुगतान करूंगा, कर्मों के अनुसार अगला शरीर मिलना तय है, लेकिन कब और कहां वो पता नहीं। हो सकता है क्षणिक भर में दोबारा जन्म हो जाए, हो सकता है हजार साल लग जाए। तो इतने लंबे अरसे तक वह आत्मा, वह मन या जीव आत्मा अन्य लोक में तड़पती रह जाए, ऐसा हो सकता है। शुक्ल पक्ष का मतलब है कि दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपने प्रकाश को बढ़ा रहा है, अर्थात मन अपने आप को दिन प्रतिदिन पवित्र कर रहा है। विचार कीजिएगा। इसलिए कहा जाता है जो आदमी अच्छे काम करता रहे, परमात्मा को जाने का प्रयास करता जाए, अपने आप को संसारी भोगों से हटाकर अपने लक्ष्य की ओर, परमात्मा की प्राप्ति की ओर, टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन जा रहा हो, उसको मुक्ति मिल सकती है। अश्विनी मास में ये दो पक्ष होते हैं जिसको हम बोलते हैं, माफ कीजिएगा, एक पक्ष हो जिसे हम कहते हैं पितृपक्ष। यह अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष के समय इसको पितृपक्ष कहा जाता है, इसको हम श्राद्ध भी कहते हैं। एक समय निर्धारित किया हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु सन्यासियों ने, कि इस वक्त आप अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए कुछ करते हैं। अब क्या करते हैं विचार कीजिएगा। पहले श्राद्ध का शब्द का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है प्रेम, अनकंडीशनल लव। श्राद्ध में श्रद्धा प्रधान है। पितृ कौन है? जो लोग गुजर गए हैं, फोर फादर्स हु हैव पास्ड अवे। अंग्रेजी में शब्द है पास्ड अवे, हिंदी में शब्द है गुजर गए हैं। आप कहीं जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं। हम कहते हैं आई जस्ट पास्ड अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। जो आदमी यहां से गुजर गया। इसी प्रकार से एक जीव आत्मा इस संसार में आई, संसार को भोगा, संसार में रही, कुछ अरसे के बाद, हो सकता है एक पल का समय हो, हो सकता है 120 साल की आयु हो, वो चली गई, गुजर गई। ये शब्द हमें साफ बताते हैं कि हम यहां पर गुजरने के लिए आए हैं। वी आर जस्ट पासिंग बाय। ये टेम्पररी है, स्थाई है। अच्छा, इन पितृपक्ष के समय हम करते क्या हैं? अधिकतर लोग मंदिरों में जाके दान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, पक्षियों को खाना खिलाते हैं। ये मान्यता है, ब्राह्मण को खिलाने से, पक्षियों को खिलाने से वो जीवात्मा जिसको आप याद कर रहे हैं वह उनके शरीर में आके भोजन को या आहार को ग्रहण करती है। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये मान्यता है, लोग करते हैं, जल देते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों की तस्वीर को आगे रख के उनको तिलक लगाते हैं। आप विचार कीजिएगा। आपको शरीर में कोई रोग है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, डॉक्टर कहता है भाई तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री क्या है? आप बोलते हैं कि मेरे दादाजी को हार्ट अटैक हुआ था, मेरे पिताजी को डायबिटीज थी। डॉक्टर बोलता है हाँ, आपके दादा को हार्ट अटैक हुआ था, पिताजी को डायबिटीज थी, इसका मतलब है आपको भी वो रोग हो सकता है। हम कहते हैं डीएनए में है वो, आपके रक्त में, आपके खून में है। जो पूर्वज गुजर गए हैं जिनको ये रोग था, वो रोग आपके अंदर आ सकता है, ये विज्ञान कहता है। सही बात है ये नहीं? इसका मतलब जो आपके पूर्वजों के अंदर हेल्थ इश्यूज थे वो आपके अंदर भी आ सकते हैं, जो आपके पूर्वजों की विचारधारा थी वो आपके अंदर भी आ सकती है। जब इतना कुछ हो सकता है तो जो पूर्वजों ने, अन्य शब्दों में समझते हैं, मान लीजिए आपके पूर्वज, आपके दादा श्री या परदादा आपके नाम पे कुछ मिलियन डॉलर्स रख जाते हैं, कुछ करोड़ रुपए रख जाते हैं, आप क्या करेंगे पैसे का? निश्चित है आप पैसे का उपयोग करेंगे। हो सकता है आप दान भी करें, हो सकता है जन कल्याण में पैसे को खर्च करें, लेकिन अधिकतर लोग उस पैसे का अपने लिए उपयोग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन पैसा तो आपने नहीं कमाया, आपके पूर्वज पैसे को कमा के रख गए, आप उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर आप उनके सारी अच्छी चीजें ले सकते हैं तो बुराइयां नहीं आएंगी क्या? अगर आपके पूर्वज कोई गलत काम कर गए हैं तो नाम उनका खराब नहीं होगा कि लोग आपको नहीं बोलेंगे ये उनका बेटा है जिसने ऐसा काम किया था? लोग ताने नहीं मारेंगे, लोग कहेंगे नहीं अच्छा ये उसका बेटा है जो जेल गए थे भाई साहब। अगर अच्छे काम कर गए पूर्वज तब भी लोग बोलेंगे देखो कितना भला काम कर रहे, उसके दादा कितने भले व्यक्ति थे। हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं अगर आपने पूर्वजों को याद करके उनको समझ के आप आने वाले जीवन को जिए, वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपके पूर्वजों में दादा परदादा को या पिताश्री किसी को डायबिटीज थी, आपको मालूम है उनको ये बीमारी थी, साइंस के अनुसार विज्ञान के अनुसार वो बीमारी आपके अंदर आ सकती है, तो आपको क्या करना है? अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सही बात है नहीं? जो कर्म या जो हेल्थ इश्यूज उनको थे वो आपको आ सकते हैं, तो आप उस पर ख्याल रखेंगे अपना आप, ठीक है ना? इसी प्रकार से हम ये कहते हैं अगर कोई आत्मा, कोई जीव आत्मा, कोई व्यक्ति पूरी उम्र कोई चीज के लिए तड़पता रहा हो, अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, दूसरे लोक में चला जाए, ये माना जाता है कि वह जीव आत्मा आज भी तड़प रही होगी क्योंकि उसकी मृत्यु सही प्रकार से नहीं हुई है। अब मृत्यु सही प्रकार से हो ये कैसी बात है? आप भली प्रकार जानते हैं जब मृत्यु घर में आएगी वह दस्तक नहीं देगी, वह आपको ईमेल नहीं भेजेगी, आपके फेसबुक में कोई अपडेट नहीं होगा, कोई आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं आएगा, कोई आपको एसएमएस नहीं आएगा, कोई आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं आएगा, कोई आपके सामने वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। मृत्यु ने जिस दिन है जिस समय आना है उसी क्षण आ जाएगी। आर यू प्रिपेयर्ड? आप तैयार है क्या? अब तैयारी क्या होती है? उसी की बात कर रहे थे कि मृत्यु के समय जो आपके मन की दशा होती है, आपका मन अंधकार की ओर जा रहा है या प्रकाश की ओर जा रहा है, वही स्थिति आगे चली जाती है। उसी को कहा गया कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अगर मृत्यु के समय आपको वासनाएं तरसा रही हैं, तड़पा रही हैं, संसार को भोगने की इच्छा बहुत प्रबल है, वो इच्छा आपके साथ जाएगी और निश्चित ये तय है कि आप फिर लौट कर आएंगे भोगने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? अर्जुन जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता है, मुझ तक पहुंच जाता है। नो मोर डेथ नो मोर बर्थ, यानी शब्द नो मोर बर्थ नो मोर डेथ। हे अर्जुन जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता है, वो मुझ तक पहुंच जाता है, वो मुक्त हो जाता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, दोबारा मृत्यु नहीं होती। दोबारा जन्म क्यों होता है? क्योंकि हम ठीक से मरे नहीं, क्योंकि हमारी वासनाएं रह गई, हमारी इच्छाएं रह गई, हमारे कर्म रह गए। जो जन्म होगा तो मृत्यु होगी, मृत्यु होगा तो जन्म हो सकता है, अगर मृत्यु ठीक से ना हुई हो। अंतकाल की तैयारी करनी होती है और ये श्राद्ध हमको ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज हो सकता है अपने अंतकाल में परमात्मा को याद ना कर रहे हो सकता है अंतकाल में उनको मुक्ति का रास्ता ना नजर आया हो सकता है उनकी तैयारी पूरी ना हुई हो। कम से कम मेरे पास मौका है, मैं अपने पूर्वजों को याद करके उनके संस्कारों को लेके, उनके वैल्यूज को लेके, उनकी अच्छाइयों को लेके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हूँ। आने वाली पीढ़ियों को भी, आने वाली जनरेशन को भी मैं अच्छे संस्कार देकर समाज का कल्याण कर सकता हूं। विचार कीजिएगा आप। पिंडदान क्या जाता है जी? पिंडदान। आप जरा विचार करें, जो साधु संत हिमालय की गोद में बैठ के हजारों सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करते हैं वो मूर्ख हैं क्या? क्या जरूरत है? दो तीन बच्चे पैदा कर लो, कोई ना कोई लड़का आपका पिंडदान कर देगा, कोई ना कोई आपका श्राद्ध कर देगा, आपका मुक्ति मिल जाएगी उस समय। क्या जरूरत है इतने सालों तक बैठकर तपस्या करने की? इतना आसान नहीं है। आपकी मुक्ति आपके हाथ में, कोई दूसरा व्यक्ति आपका मुक्ति दे ही नहीं सकता। सेल्फ एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड, पुरुषार्थ करना होगा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, डिसिप्लिन, अनुशासन। हम कहते हैं हमारा पुत्र हमारा पिंड दान कर देगा। पिंड का मतलब क्या होता है? पिंड का मतलब होता है शरीर। अब शरीर का दान क्या होगा? मरने के बाद क्या दान होगा? जब व्यक्ति आपके सामने जीवित है, जब आपके माता पिता आपके सामने जीवित है, तब आपने उनकी सेवा नहीं करी, तब आपने उनको जल नहीं पिलाया, पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद क्या खाक पिलाएंगे? एक साधु ने अपने शिष्य को बोला, भाई ऐसा करो, श्राद्ध का समय आ गया है, जाओ थोड़ा दूध लेके आओ, हम खीर बनाएंगे, पितरों को खिलाएंगे। वह बालक कटोरा लेके या अपना बर्तन लेके दूध लेने जा रहा, रास्ते में देखा है गाय मरी पड़ी है। उन्होंने थोड़ी घास काटी, गाय के आगे रख दी, चुपचाप बैठ गया। गाय तो मर चुकी, उठी नहीं, काफी समय हो गया। गुरु परेशान हो रहे थे, अभी तो शिष्य आया नहीं है। गुरु अपने शिष्य को खोजने निकले, उन्होंने रास्ते में देखा, ये क्या, मेरा शिष्य मरी गाय के सामने बैठा हुआ है। उनका बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम तो दूध लेने गए थे। कहते गुरुजी महाराज, मैं यहां दूध लेने आया था, लेकिन गाय मरी हुई है, मैंने घास रखी हुई है, गाय उठेगी, घास को खाएगी, खाने को पचाएगी, फिर दूध देगी, मैं दूध लेके आपके पास आऊंगा। गुरु महाराज नाराज होने लग गए, कहते क्या बात करते हो, गाय मर गई है क्या, मरी हुई गाय घास खा सकती है? शिष्य बोलता है, गुरु वर, ये गाय तो आज ही मरी है, जब अभी मरी हुई गाय घास को नहीं खा सकती, आप जिन पितरों के लिए पूजा कर रहे हैं, क्या वो इतने सालों के बाद खीर खा पाएंगे? पॉइंट टू बी नोटेड, क्या इतने वर्षों के बाद वो खीर खाने आएंगे क्या? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप श्राद्ध ना करें, पितृपक्ष में अपने तर्पण ना करें, या पूर्वजों को याद ना करें, या दान ना करें, सब कुछ करें जो भी आप करना चाहते हैं। कि हमारा माइंड कंडीशन है, क्योंकि हम ऐसे पले बड़े हुए हैं, हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। लेकिन बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, पिंड का अर्थ होता है शरीर। अपने शरीर का दान करने से आपको मुक्ति मिलती है। शरीर का मतलब यह नहीं है कि मरने के बाद आपके घर वाले आपके शरीर को ले जाकर अग्नि में जला दें, जमीन में दफना दें, वो दान हो गया, या पक्षियों को खिला दें, दान हो गया। शरीर दान का मतलब होता है, पिंड दान का मतलब होता है आपका शरीर समाज के कल्याण हेतु प्रयोग में लाया जाए, आपका शरीर भगवान के काम में लग जाए। आप अपने शरीर से किसी को दुख नहीं देंगे, आप अपने शरीर से किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, आप अपने जीभ से अपने शब्दों से किसी को आघात नहीं करेंगे, आप अपने विचारों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को हाय नहीं लगाएंगे, आपकी वाणी किसी को काटेगी नहीं, किसी को मारेगी नहीं, किसी को जलाएगी नहीं। तो बॉडी थॉट वर्ड एंड डीड, ऐसे समझिएगा आप, विचारों से, शब्दों से, शरीर से आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कल्याण कर सकते या नहीं कर सकते नहीं फर्क पड़ता, लेकिन बुरा नहीं होना चाहिए। आपका शरीर संसार के काम आ जाए, उसी को एक बहुत बड़ा पिंडदान माना गया, उसी को श्राद्ध माना गया। श्राद्ध में क्या प्रधान है? श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? प्रेम, लव। अगर आप प्रेम से अपने शरीर का प्रयोग संसार के कल्याण हेतु करते हैं, जीते जी आपका श्राद्ध हो जाता है। जीते जी आपको कोई भी पितृपक्ष की इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है। विचार कीजिएगा, जो आदमी अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की खोज में लगा देता है, परमात्मा स्वयं चलते हुए उसके घर पे आ जाते हैं। इतिहास साक्षी है। शबरी के घर में राम जी नहीं आए क्या? झूठे बेर खा लिए, प्रेम के वश में थे। विदुर जी के घर भगवान कृष्ण नहीं आए, केले के छिलकों को खा गए। विचार कीजिएगा। तो श्राद्ध में क्या है इंपॉर्टेंट चीज? श्रद्धा अर्थात प्रेम। अब आप विचार कीजिएगा कि हम श्राद्ध में क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। आप दान देना चाहते हैं, दान अवश्य दीजिए, लेकिन किसको? जिसको जरूरत हो। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि ब्राह्मण को दान देने से आपका भोजन पितरों तक पहुंचेगा। विचार करके देखिएगा, जो लोग गरीब हैं, सड़कों पे रह रहे हैं, होमलेस हैं, जिनको खाने को खाना नहीं मिलता, वहां सहायता करेंगे तो बेहतर रहेगा। हम धन का दान करते हैं, धन कहां देना चाहिए? जहां धन की आवश्यकता हो। किसी बच्चे को पढ़ाने में लगा दीजिए। ट्राई टू बी मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। विचार कीजिएगा, कल को जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां आपका श्राद्ध करेंगी या नहीं। करेंगी फॉर द सेक ऑफ डूइंग, केवल करने की मात्र के लिए, कोई भय से, कोई डर से, या प्रेम पूर्वक। तो हमें क्या करना है? हमें पितृपक्ष के समय, श्राद्ध के समय अपने पूर्वजों को याद करके, उनके संस्कारों को, उनके वैल्यूज को, उनके अच्छे कामों को याद करके वो अपने भीतर लाने हैं। अगर कोई उनके हेल्थ इश्यू से, उस पर ध्यान देना है कि वो हेल्थ इश्यू हमें ना आ जाए, हम अपनी उससे अभी रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों को भी तैयार करें। इसी को सच्चा श्राद्ध माना जाएगा, इसी को सच्चा पितृपक्ष मनाना माना जाएगा। क्योंकि हम सब यहां से गुजर रहे हैं, वी ऑल आर पासिंग बाय, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारा शरीर यहीं धरा का धरा रह जाएगा। ना धन जाएगा, ना संपत्ति जाएगी, ना शरीर जाएगा। जाएंगे तो केवल विचार, जाएंगे तो हमारे अपने ही कर्म, जाएंगी तो हमारी अच्छाइयां बुराइयां। तो इस पे मनन करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जय श्री साईं राम।